यशाया अध्याय 46। अध्याय 46 में हम देखेंगे कि यहोवा जो सच्चा एवं अनंत परमेश्वर है और जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, उसकी तुलना यशाया उन मूर्तियों से कर रहा है जिनकी लोग उपासना कर रहे थे। दुख की बात तो ये है कि वे इसराइली थे जो इब्राहिम, इसाक और याकूब के वंशज थे। वे मूर्ति पूजक बन गए थे। यशाया और यरमिया की पुस्तकों को पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि वे किस प्रकार मूर्ति पूजा के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। वे उन्हें चेतावनी दे रहे थे कि उनकी मूर्ति पूजा परमेश्वर का दंड उन पर ले आएगी। दंड का साधन बाबुल होगा और वे बाबुल के दासत्व में ले जाए जाएंगे। यरमिया की पुकार का ध्यान कीजिए। यरमिया 2:13। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। मनुष्य किसी न किसी की उपासना अवश्य करता है। मनुष्य किसी न किसी में विश्वास रखता है। मनुष्य को विश्वास रखना भी जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य का एक ईश्वर है, परंतु कुछ धर्म तंत्र ऐसे हैं जिनमें जल ही नहीं है। वे विश्वासियों को कुछ नहीं दे पाते, वरन उन्हें दासत्व में ले जाते हैं। इसी कारण परमेश्वर पुकार रहा है। इसराइल में की गई कुछ पुरातत्व विभाग की खुदाइयां बड़ी रोचक है। गीहोन के सोते के ऊपर ओफेल पर्वत के ढाल पर, जो दाऊद के युग से चलकर हिजकिया के युग का प्राचीन यरूशलेम नगर था और जो बाबुल की सेना द्वारा ध्वस्त किया गया था, वहां खुदाई की गई है। 2500 वर्ष बाद जब वहां खुदाई की गई तो वहां पत्थरों और घरों के मलबे में बहुतायत से मूर्तियां पाई गई। ये वही मूर्तियां थी जिनकी वे उपासना करते थे। इस प्रकार हम यशया के संदेश की पुष्टि पुरातत्व विभाग से प्राप्त करते हैं कि वह उन्हें झूठे ईश्वरों की उपासना के लिए झिड़क रहा था। ये विशेष करके उनके दो देवताओं का उल्लेख करता है, जबकि उन्होंने अनेक देवताओं की मूर्तियां बना रखी थी। यशाया अध्याय 46 1-2। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है, उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी है। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गई और थकित पशुओं पर लदी है। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप भी बंधुआई में चले गए हैं। वो उनके झूठे ईश्वरों की उपासना के विषय कहते हुए एक सत्य का उल्लेख करता है, और वो यह कि उनके झूठे ईश्वर उन पर बोझ बन गए, उनके पशु भी उन्हें उठाकर थक गए। उनकी प्रथा के अनुसार इन देवताओं को वे पवित्र दिनों या उत्सवों पर मंदिरों से बाहर निकालकर इनके नीचे लोग डंडों को पकड़कर कंधों पर उठाकर घूमते थे। आज भी ये बातें आम है। मेक्सिको में संत ग्वाडलूप का त्योहार मनाया जाता है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि वे उसे सुसज्जित रथों और गाड़ियों पर बैठाकर नगर की सड़कों से लेकर चलते हैं और लोग उसके सामने घुटने टेकते हैं, झुकते हैं और प्रणाम करते हैं। अतः हमारे युग में भी ऐसी बातें होती है। परमेश्वर के जन जो सच्चे परमेश्वर का अधिक ज्ञान रखते हैं, वे भी बेल और नभों की उपासना करने लगे थे। इन देवताओं की उपासना में एक और रोचक बात देखी गई, क्योंकि ये देवता अपने आप चल नहीं सकते थे, उन्हें मनुष्य उठाते थे या पशु खींचते थे। इस प्रकार वे बोझ बनकर उनके उठाने वालों को झुकाते थे और नीचे गिराते थे। इसके विपरीत परमेश्वर कहता है, यशया 46 अध्याय पद 3, हे याकूब के घराने, हे इसराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों। यहां पर एक दिलचस्प पद है, क्योंकि इसराइल के घराने के सब बचे हुए लोग वे लोग होंगे जो उत्तरी राज्य के नागरिक थे, वे जो अशूरों के आक्रमण के समय यहूदा में भाग गए होंगे। अतः प्रत्येक गोत्र से बचे हुए लोग थे जो यहूदा भाग गए थे। अन्यों को अशूरों ने विश्व के अन्य भागों में तितर बितर कर दिया था। अनेक थे जो विभिन्न गोत्रों से निकलकर यहूदा में जा छिपे थे। अतः यशाया अध्याय 46 पद 3, इसराइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, वे अपने झूठे देवताओं को साथ लिए हुए थे, परंतु इसके विपरीत परमेश्वर कह रहा है, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा। यशाया अध्याय 46 पद 3 और 4, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं, तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। अतः सच्चा और जीवित परमेश्वर उठाए जाने की अपेक्षा स्वयं उन्हें उठाए फिरता रहेगा। वो सहायता खोजने की अपेक्षा उनकी सहायता करेगा। अतः अब ये आप पर निर्भर है कि आपको कैसा परमेश्वर चाहिए। क्या आपको ऐसा परमेश्वर चाहिए जो आपसे सहायता ले, या ऐसा परमेश्वर जो आपको सहायता दे? आपको ऐसा परमेश्वर चाहिए जो आपको लिए फिरता हो, या ऐसा परमेश्वर जिसे आप उठाए फिरते हो? ऐसा परमेश्वर जो आपको बंधुआई में ले जाए, या ऐसा परमेश्वर जो आपको मुक्ति दिलाए? परमेश्वर ने इस प्रकार से उन मूर्तियों की जिनकी वे उपासना करते थे तुलना सच्चे और जीवित परमेश्वर से की। अब परमेश्वर कहता है, यशाया अध्याय 46 पद 5, तुम किससे मेरी उपमा दोगे? उन्होंने अपनी अपनी मूर्तियां बना रखी थी। उन्होंने या तो धातु पिघलाकर उन्हें सांचों में ढाला था, या लकड़ी को तरशकर उन्हें तैयार किया था। उन्होंने मूर्तियों को अपने देवताओं के रूप में बनाया था। परमेश्वर कहता है, तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे, किससे मेरा मिलान करोगे? यशाया अध्याय 46 पद 5, मुझे किसके समान बताओगे, किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? आप परमेश्वर की तुलना मानवीय स्तर पर किससे कर सकते हैं? आप उसे किसके रूप में बना सकते हैं? यदि आप उसको तरसना आरंभ कर दें, तो आप उसे कैसे और किस रूप में तरसेंगे? क्या आप उसे मनुष्य का रूप देंगे? परमेश्वर तो आत्मा है, अतः आप आत्मा का रूप कहां से लाएंगे? वो फिर से कहता है कि उन्होंने अपने अपने देवताओं की मूर्तियां बना ली थी। क्या आपने इन देवताओं की मूर्तियों को देखा है? वे उन्हें कहते थे, ये परमेश्वर है। वे उनके सामने झुक कर उनकी आराधना करते थे। उन्होंने इन मूर्तियों के लिए विशाल मंदिर बना दिए थे। क्या आपने कभी डायना की मूर्ति देखी है? उसे वे देवी मानते थे। उसके अनेक उपासक थे, पूरे शरीर में स्तनों से भरी हुई डायना की मूर्ति, वो देवी है, सांकेतिक रूप से जीवन देने वाली देवी। अतः वे उसकी पूजा करते थे, वे डायना की पूजा करते थे। यही कारण था कि परमेश्वर ने कहा, तुम मुझे किसके समान बनाओगे। वह उनके द्वारा मूर्ति बनाने के विषय में कह रहा है, यशाया अध्याय 46 पद 6, जो थैली से सोना उंडेलते व कांटों में चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उसे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। मूर्ति को मनुष्य बनाता है और उसकी मूर्खता देखें कि वही उसे दंडवत करके उसकी उपासना करता है। कल्पना कीजिए कि वो परमेश्वर की रचना कर रहा है, मनुष्य अपने लिए अपना परमेश्वर बनाता है। मनुष्य के अंतकरण में कहीं ना कहीं परमेश्वर का बोध अवश्य है, जो मनुष्य के उस स्वभाव का एक भाग है जो उसका उपासना का स्वभाव है। अतः प्रत्येक संस्कृति में, आदिवासियों की संस्कृति में भी आप परमेश्वर की उपासना का या परमेश्वर का कोई रूप अवश्य पाएंगे, और अधिकांश स्थिति में मनुष्य ने अपनी कल्पना के अनुसार परमेश्वर का रूप निर्धारित कर लिया। वो सोचता था कि यदि मैं परमेश्वर होता तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार वे अपने देवताओं की दंत कथा सुनाते हैं कि उसमें शिकार खेलने की असीम शक्ति है और युक्तियां भी है, अतः वो उनकी उपासना करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में आदिवासी कपड़े नहीं पहनते हैं। जब आंधियां चलती है तब उनको सर्दी महसूस होती है और कांपने लगते हैं। उनमें से कुछ खाना बदोश है। वे अपने मन में सोचते होंगे कि यदि मैं परमेश्वर होता तो उस विशाल पेड़ में रहता, क्योंकि वो बड़ा भी है और मजबूत भी है। जब आंधी आएगी और पानी बरसेगा तब उस पर प्रभाव नहीं होगा। उस पेड़ को हवा और आंधी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यदि मैं परमेश्वर होता तो मैं उसी पेड़ में होता और उसी पेड़ में रहता। इस प्रकार आप देखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार पेड़ की उपासना आरंभ कर दी, और उन्होंने विशेष आराधनाओं के लिए अलग अलग वृक्ष निर्धारित कर दिए। चांद को ही देख लीजिए, जो जंगलों में रात को प्रकाश देता है। उस समय वे जंगलों में एक दूसरे के गले में हाथ डाले नृत्य करते हैं और अपने देवता की उपासना में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वे कल्पना करते हैं कि यदि मैं परमेश्वर होता तो चांद में बैठकर रात को ये सुहाना प्रकाश देता, जंगल में ये चमकीला प्रकाश देता, आदि आदि। इस प्रकार वे उपासना करना आरंभ कर देते हैं। यूनानियों का परमेश्वर के प्रति विचार बड़ा रोचक विषय है। उनकी अभिव्यक्ति इस उक्ति में है, यदि मैं परमेश्वर होता तो ओलंपस पर्वत पर वास करता और नीचे दृष्टि डालकर उन मनुष्यों को देखता जो नीचे रहते हैं, और उन पृथ्वी वासियों वहां रह रहे नश्वर मनुष्यों को सुंदर युवतियों के साथ रहने का मौका प्राप्त नहीं होता होगा, क्योंकि मैं अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करके उन्हें मोहित करता, उन्हें वशीभूत करता, और मैं उन नश्वर प्राणियों से लाभ उठाता। इस प्रकार आप देखते हैं कि परमेश्वर के विषय विभिन्न विभिन्न धारणाएं हैं जिनकी कल्पना मनुष्य अपने मन में करता है। अतः यहां वो ईश्वर की रचना करता है, तब मनुष्य उसके सामने झुककर उसकी उपासना करता है। तब यशाया अध्याय 46 पद 7, वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, ये हमारा ईश्वर है। यशाया अध्याय 46 पद 7, वे उसे उसके स्थान में रख देते और वो वहीं खड़ा रहता है, वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दोहाई भी दे तो भी ना वो सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। परंतु मनुष्य फिर भी इन वस्तुओं की उपासना करता है जो हिल नहीं सकती, सुन नहीं सकती तथा बोल नहीं सकती। वे सच्चे और जीवित परमेश्वर के स्थान पर उनकी उपासना करते हैं। यही तो एक त्रासदी है। लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। ये सत्य है कि वे विश्वास नहीं करते हैं। उनके पास अपना देवता है। वे एक सच्चे और जीवित परमेश्वर में विश्वास करने से इनकार करते हैं, जो उनकी सहायता करने में सामर्थ्य है और उनकी आवश्यकताओं में प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है। इसकी अपेक्षा वे उन देवताओं की उपासना करते हैं जो कुछ भी सहायता नहीं कर सकते हैं। वे तो उन्हें केवल बंदवाई ही में ले जा सकते हैं। वे राग रंग के देवताओं की भी प्रायः उपासना करते हैं। इस प्रकार आप अपने जीवन को राग रंग का दास बना देते हैं और आपका अंत लालसाओं में होता है। कई लोग ऐसे हैं जो बुद्धि के देवता की पूजा करते हैं। आप उसके दास बन जाते हैं और आपका अंत घमंड में होता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्रजनन के देवता की उपासना करते हैं और अपने आप को व्यभिचार के अधीन कर देते हैं। उनका अंत पापमय में होता है। अतः बाइबल इन झूठे देवताओं के विषय में कहती है, वे आपको उत्तर नहीं दे सकते, वे चल नहीं सकते, वे तो अपने आप को उठा भी नहीं सकते। यशाया अध्याय 46 पद 8 से लेकर 10 तक। परमेश्वर ने कहा, हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है, मैं तो अंत की बात आदि से। ऐसा कोई देवता नहीं है जो आदि से अनंत तक की बातें बता दे। ऐसा अन्य कोई धर्म तंत्र नहीं है जो परमेश्वर के आदि और अनंत के ज्ञान पर आधारित हो। यशाया अध्याय 46 पद 10। और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। यशिया के युग में बहुत सी भविष्यवाणियां जिन्हें वो लिख रहा था पूरी नहीं हुई थी। यशाया अध्याय 46 पद 10। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने भविष्य का निर्णय कर दिया है। निर्णय बदल नहीं सकता। परमेश्वर कहता है, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यशाया अध्याय 46 पद 11। बुलाता हूं अब परमेश्वर का संकेत अध्याय 45 की ओर है, जहां उसने कहा था कि कुसरू मादी राजा इसराइलियों को बाबुल की बंदवाई से मुक्त कराने में उसका साधन होगा। ये भविष्यवाणी कुसरू के जन्म से 150 वर्ष पहले कही थी। यही कारण है कि परमेश्वर घोषणा करता है कि उसके तुल्य दूसरा कोई नहीं। वो उन बातों को बताता है जो होना निश्चित है। वो उस व्यक्ति का नाम भी बता रहा है जिसका जन्म अभी हुआ ही नहीं है। वो तो मुझे जानता नहीं, परंतु मैं उसका नाम बता रहा हूं। उसका नाम कुसरू है और वो तुम्हें इसराइल को बंदवाई से मुक्त करेगा। अतः कुसरू के बारे में भविष्यवाणी के संदर्भ में वो कहता है, यशाया अध्याय 46 पद 11। मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूं। मैं ही ने ये बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि परमेश्वर ने ऐसा ही किया था। उसने संकल्प किया और उसने वैसा ही करके दिखाया। कुसरो मादी फारस का राजा था जिसने ये आज्ञा निकाली थी कि इसराइल की संतान बाबुल की बंदवाई से लौट जाएं। उसने उन्हें लौट आने पर मंदिर के पुनर्निर्माण की अनुमति लिखित में दी थी। यशाया अध्याय 46 पद 12 और 13। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूं, वह दूर नहीं है, और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इसराइल को महिमा दूंगा। अतः परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि उनका उद्धार और उनकी धार्मिकता सियोन में रहेगी।